तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, तो नीचे एक सरोवर है, उसका नाम है गहवर कुंड या तो राधा सरोवर, दोनों में से एक नाम है। और एक चीज़ बताने को मैं भूल गया आपको, जो रास्ता में बताया था मैं दोबारा बताऊंगा। यहाँ पर श्री जी के मंदिर से यहाँ तक, थोड़ा आगे तक जो वन है उसको गहवर वन कहते हैं। और ये गहवर वन जो है, इसकी विशेषता ये है कि इसको राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, पर्सनली इसके पेड़ पौधे वेली बोए हैं, उसको जल दिया है, उसको संवारा है, उसको बनाया है कृष्ण के आनंद के लिए। राधा रानी ने स्वयं बनाया है। और शास्त्र में लिखा है कि बचपन में राधा रानी और कृष्ण यहाँ पर खेलते थे और वेलियों का मैरिज पेड़ से करते थे। दे इज टू गेट द क्रीपर्स मैरिड विद द बिग ट्रीज, खेल खेल में। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल आर्चिस, उसको कमान कहते हैं, वितान, वितान या कमान कहते हैं, उसमें सब फूल सजाते हैं, उसमें वेलियाँ सजाते हैं। यहाँ की लीला ऐसी है गहवर वन की कि राधा रानी सब कुछ बनाती हैं, लेकिन श्रृंगार करने के बाद में श्री कृष्ण उसको हाथ पकड़ कर लेके आते हैं। एक हाथ में उसको पकड़ा है, एक हाथ से वेलियों को संवार रहे हैं। लेकिन इमेजिन आप ऐसे एक अंदर जा रहे हो, पूरा ऐसा गोल बना हुआ है, फूलों से वेली से भरा हुआ है, वेली ऐसे जा रहे हैं नीचे, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित, और राधा रानी को लेकर अंदर आ रहे कमर, प्यारी जू आगे चल, आगे चल गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयल रे, प्यारी जू आगे चल, आगे चल गहवर वन भीतर। जैसे उनको वो प्रेम से गीत गाते हुए लेके जा रहे हैं, अब बाएं हाथ से सब बेलियों को ऊपर कर रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। और अंदर जो है, जब अंदर जाएंगे उस रास्ते से, तो पूरा निकुंज बना हुआ है, उसके अंदर फूलों की शैया बनाई हुई है, फिर उनको लेकर वो शैया बिठाते हैं, सब सखियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, सब भोजन कराती है उनको, नृत्य करती है, म्यूजिक बजाती है, वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन। ये गहवर मन की लीला है। तो एक बार गहवर मन में कृष्ण आए और सब सखियाँ यहाँ पर थी, राधा रानी नहीं थी। तो राधा रानी अपने घर से निकल रही थी, तो वो कृष्ण पूछते ललिता को, राधा रानी नहीं आई? तो कहते नहीं आई, वो आज नहीं आने वाली, ऐसे उनको बुला देते। ललिता बहुत कड़वी तेज बात करती है, राधा रानी बहुत कोमल बात करती है, बहुत ही मृदु भाषिणी। तो ललिता को ठाकुर जी कहते हैं, मुझे आप झूठ नहीं बोलना, मैं जानता हूँ कि राधा रानी निकल चुकी है। तो बोलती है, कैसे जानते हो आप? राधा रानी के दिव्य शरीर से बहुत सुंदर खुशबू निकलती है और वो खुशबू यहाँ पर ऑलरेडी छा चुकी है, मैं जानता हूँ कि वो अभी आने वाली है। ये भी लीला इसी वन की, राधा रानी के शरीर से, कृष्ण के शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, तो उनका जो अस्तित्व है वो छुप नहीं सकता है। वो कहते हैं, आप राधा रानी को, कृष्ण भगवान ललिता को बोलते हैं कि आप सूरज को एक बार ढक सकते हो, लेकिन राधा रानी के खुशबू को आप नहीं छुपा सकते। वो भी गहवरमन की लीला है। तो गहवरमन में ये जो कुंड है, ये ब्रह्मा जी के चार सर हैं, तो ब्रह्मा जी यहाँ स्वयं विराजमान है ना, तो ब्रह्मा जी की नाभि जो है ये नीचे का कुंड है, दैट इज द अम्बिलिकस ऑफ ब्रह्मा जी, गहवर कुंड। और गहवर का शब्द का अर्थ यह है ओवरवेलमिंग इमोशन, जिसे आप गदगद हो जाते हो, उसको गहवर कहते हैं। तो ये वन जो है वो दोनों को, राधा कृष्ण को और सखियों को, सखाओं को, सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको गदगद करने वाला है, इसलिए उसका नाम है गहवर वन। तो उस गहवर वन के वो कुंड में राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ, गिने चुने अपने करोड़ों करोड़ों सखियों से, में से 64 गिने हुए सखियों के साथ में वो रोज शांत करती हैं। और उसके ऊपर मोरकुटी है, जब वो स्नान करती हैं अपने सखियों को लेकर, तब ग्वाल बाल उनको चुराने के लिए ऊपर से लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर। अभी क्या फेंकते हैं? टमाटर और अंडा। उस समय ग्वाल बाल जो हैं गोपियों को चुराने के लिए वहाँ से लड्डू फेंकते थे, बहुत सुंदर मोती चूर के लड्डू डिस्टर्ब करने के लिए उनको, ऊपर से झाँक रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और फेंक रहे हैं, सखियाँ स्नान कर रही हैं। तो गहवर कुंड जो है वो ऐसा कहते हैं कि देवताओं को भी प्रसन्न करने वाला है, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को संतुष्ट करने वाला है, गंधर्वों को भी आनंद देने वाला है, सबको तारने वाला है। इसके जल के प्राशन करने से राधा रानी का चरणामृत है, वो वहाँ पर स्नान किया उसने, रोज करती है स्नान, अभी भी करती है। तो वहाँ पर एक लीला हुई थी, वो यहाँ गैवरकंड के किनारे में, सुन रहे ना महेश जी, राधा रानी बचपन में एक छोटी सी गुड़िया थी, तभी वो खेल खेल रही थी। कैसे होता ना, वो कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, फिर रसोई बनाते हैं, फिर कोई काटता है, खेल खेल में होता है ना, वो बर्तन होते हैं घर घर के, फिर कोई उसमें से हस्बैंड बन जाता है, कोई वाइफ बन जाती है, फिर कोई बच्चे बन जाते हैं, फिर वो सब खाना बनाते हैं। तो ऐसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी से ही भोजन बनाया जा रहा था, एवरीथिंग मिट्टी का ही है, बर्तन मिट्टी के, चूल्हा मिट्टी का, चावल मिट्टी के, सब्जी मिट्टी की, मसाले मिट्टी के, सब मिट्टी 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 मिट्टी, ब्रजरज, दिव्य ब्रजरज। सब लोग एकदम मग्न हो गए, सब लोग जैसे अपने कभी अभी लंच का टाइम होने वाला है, भक्त आने वाला है, तो सब बिजी है बनाने के, रोटी बना रहे हैं सब जल्दी जल्दी, ऐसे एकदम उनका खेल जो है एकदम पीक पर आ गया है। और अभी वो सब कुछ रेडी होने वाला है, मतलब खीर भी रेडी हो रही है, सब्जी भी रेडी हो रही है, सब कुछ रेडी हो रहा है, और अभी रेडी होकर उसको सब खाने वाले भी हैं। उतने में दुर्वासा मुनि आते हैं, तो कुछ सखियाँ थोड़ा सा दूर सेवा कर रही हैं, तो वो दुर्वासा मुनि को देखते हैं, दुर्वासा मुनि को देखते हैं आपको क्या आ जाता है, व्हाट डू यू रिमेंबर, एंगर, उसको देखते ही पूरा क्रोध की याद आती है, फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इज क्रोध। लेकिन दुर्वासा मुनि मतलब क्रोध नहीं है, दुर्वासा मुनि बहुत महान ऋषि है। दुर्वासा मुनि ने यज्ञ करके सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, एक बार इतना वश में किया था कि एक मंत्र बोलने के बाद देवता सेवा करने के लिए हाजिर, इतना कुंती देवी ने उनको मदद की थी बचपन में, दुर्वासा मुनि बहुत महान ऋषि है, भगवान के बड़े भक्त हैं। कृष्ण की लीला में बहुत सारा उनका सहभाग भी है, लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट दुर्वासा मुनि का है, कृष्ण भगवान की लीला में बहुत उन्होंने सहभाग लिया है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ सखियाँ जो है ना एकदम खेल में मस्त मग्न है ना, कहते आइए आइए मुनि जी, आइए भोजन कीजिए, तैयार है, खीर खाइए। तो मुनि जी कहते क्या आप बकवास करती हो, मुझे मट्टी खिलाओगी, भस्म कर दूंगा। एकदम सखियाँ डर जाती है, अरे बाप रे, हमने तो बड़े प्रेम से बुलाया था, एकदम बहुत शाप भस्म करने की, भाग के राधा रानी के पास, राधा रानी श्री जी किशोरी देखो उनको भस्म बनाने वाले हैं। तो राधा रानी अपना खीर बना रही है, फाइनल टच दे रही है, तो मुनि जी वहाँ पहुँच जाते हैं, अरे कौन बदतमीज लड़कियाँ हैं, मुझे मट्टी का खीर खिलाने की बात कर रही। तो राधा रानी मधुर भाषिनी है, सम्मोहन भाषिनी है, मतलब क्या, मेस्मराइजिंग टॉक, जब वो बोलती है ना तो सामने वाला का दिल एकदम पिघल जाता है, इतनी मधुर भाषिणी, इतनी सो स्वीट चीज। तो बड़े प्रेम से राधा रानी दुर्वासा मुनि को, महेश जी क्या बोलती है, बोलते महाराज जी इतना क्यों गुस्सा करते हो, भस्म भस्म करने की बात भी करते हो, खीर तो खाओ फिर आगे सोच लेना। तो जो सखियों के कहने पर क्रोधित हो गए थे, राधा रानी के बोलने पर एकदम राजी हो गए, तुरंत हाथ में लिया और खाने लगे, उसको मट्टी खा रहे हैं, ब्रज की रज खा रहे हैं, राधा रानी ने दे रहे हैं, राधा रानी दे रही है वो खा रहे हैं, और उनको बहुत दिव्य खीर खाने का आनंद आ रहा है, उनके शरीर के अंदर तो खीर ही जा रही है, और यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है उनको कि मैं कोई दिव्य ऐसे कभी खाया नहीं, ऐसे खीर खा रहा हूँ। तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, जनता देख रही है कि वो मट्टी खा रहे हैं, लेकिन उनको खुद को खीर खाने का आनंद आ रहा है, राधा रानी का चमत्कार है। तो फिर वो कहते हैं मैं इतना प्रसन्न हूं आप पर लाली कि आज से मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी तुम बनाओगी वो अमृत से भी अधिक सुंदर स्वादिष्ट होगा, क्योंकि वो अमृत को चखे हुए हैं, दुर्वासा मुनि जानते हैं अमृत क्या चीज है, अमृत से भी अधिक बढ़कर थी वो खीर। तो कहते हैं कि आपके हाथ में से जो बनेगा वो अमृत से भी बढ़कर रहेगा, जो खाएगा वो सब प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएगा, और जो खाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा, ऑलवेज विक्टोरियस। तो ये कहानी का कनेक्शन है उधर, तो मैया सुनती है, यशोदा मैया, तो उनको अपने घर बुलाती है, तो वो ये लीला जो है वो यहाँ पर हुई थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया, उसको इधर बताया। और एक लीला यहाँ पर हुई थी इसके किनारे, कुंड के किनारे। वो क्या है ना, कृष्ण भगवान बहुत चोरी करते हैं, मालूम है ना आपको। अरे सखियाँ ऐसे बात कर रही हैं तो बात करते करते इतना उनको फंसा देते हैं, तो इधर का मणि गायब, इधर का बिंदी गायब, इधर का बिंदी गायब, गले का। बात करते करते जब बात खत्म हो गई, दिखता अरे कंगन गायब, यहाँ का मणि गायब, क्या चल क्या रहा है, कुंडल गायब। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग राइट। आप पूरा श्रृंगार करके आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात खत्म हो गई तो आधा श्रृंगार गायब, बहुत कष्ट वाली बात है। तो वो परेशान हो जाते हैं सब लोग, वो सोचते हैं कि अभी ना इनको अच्छा दंड देना चाहिए, हमेशा हमको ऐसे फंसा देते हैं, हम लोग भोली भाली गोपियाँ हैं, सबको ऐसे तंग करते रहते हैं। अभी एक आइडिया करेंगे, इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ना जिंदगी भर याद रखेंगे हम लोग सब लोग ना, एक घर के अंदर अच्छा अच्छा मक्खन जो बेस्ट है वो बना के रखेंगे, सब खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, एक ही दरवाज़ा खुला रखेंगे, और हम सब लोग झाड़ी में छुप जाएंगे, हजारों की संख्या में छुप जाएंगे, और तय करेंगे कि तू कृष्ण को पकड़ना, तू बलराम को पकड़ना, तू मधुमंगल को, तू इसको, ऐसा जोड़ी फिक्स है, कन्फ्यूजन नहीं है बाद लास्ट मोमेंट मैं किसको पकड़ू, ऐसा घास भाग जाएंगे। नहीं, तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे मधुमंगल को पकड़ना है, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, बाकी सब लोग अपना अपना पकड़ेंगे, मैं खाली मधुमंगल को पकड़ूंगा। इस तरह से जोड़ियाँ बना देते हैं और फिक्स करते हैं, चार चार गोपी एक एक आदमी को पकड़ने के लिए ऐसा फिक्स कर देते हैं, मतलब वो निकल ना पाए किसी तरह से, सबका सेटिंग कर देते हैं, सब छुप जाते हैं, एक दरवाजा खुला रखते हैं। कुछ देर बाद कृष्ण आते हैं, देखते हैं आज तो मक्खन के मटके बहुत नीचे लगाए हैं, क्या बात है, और सूरज कहाँ से आया, आज पश्चिम से आया क्या, बहुत भाग्य का दिन है आज, अच्छे स्टार से स्टार आकाश में आज। और देखते हैं उसमें घंटी भी लगी हुई है, तो गोपियों ने घंटी को जानबूझ के लगाया था, और घंटी को कहा था कि जब ये खाने को आएंगे ना तो तुम बजना, फिर आपके बजने की आवाज़ सुन के हम लोग आएंगे और सबको पकड़ेंगे। तो कृष्ण देखते हैं, बलराम देखते हैं, अरे वाह बहुत नीचे नीचे मटके लगा के रखे हैं। तो फिर घंटी को देखते हैं, तो अरे गड़बड़ है, तो घंटी खड़ी यहाँ पर, तो घंटी से बात करते हैं, अरे घंटी क्यों क्यों लग रही है यहाँ पर, तो बड़े आपने तो मर्यादा बना के रखी है कि आप जब खाते हो तो मुझे बजना है, ये मेरा सेवा है, तो बोले एक काम करो आज नहीं बजना आपको। आज नहीं बजना है आपको, आज आपकी सेवा है नहीं बजना, रोज की सेवा है बजना, लेकिन आज आपका नहीं बजना है। बोले ठीक है, तो फिर जाते हैं पास में, मक्खन में हाथ डालते हैं और खाने लगते हैं, टंगड़ंगड़ंगड़ंगड़ंगड़ंगड़ंग बजने लगती है। अरे इसमें मैं विचार करने के पहले क्यों बजी, ऐसा पूछने के पहले ही सब गोपियाँ आकर सबको पकड़ लेती है, वो घंटी को पूछने का मौका नहीं, अरे तुमने तुमको मैंने कहा था कि मत बजो तो क्यों बजी, ऐसा कुछ चांस ही नहीं है, पकड़ लेते पूरा। क्योंकि कृष्ण भगवान और बहुत चतुर चालक होते हैं, वो क्या झट से ना ऊपर की खिड़की खोल लेते हैं और फटाफट वो सीढ़ी बनाकर एक के बाद करके सबको ऊपर खींच लेते हैं। यू नो हाउ फास्ट दे आर, वो सब लोग ऊपर खिड़की से वो स्तर बनाकर भाग जाते हैं और ऊपर सबको खींचते हैं, फटाफट सब लोग निकल जाते हैं। वो उनको ध्यान में नहीं आता कि ऊपर से जाएंगे, सब नीचे से प्लानिंग करके रखा है ना उन्होंने, तो नीचे से प्लानिंग करने का है, ऊपर की प्लानिंग का कुछ विचार ही नहीं किया था, तो सब खिड़की से भाग जाते हैं। लेकिन लेकिन यानी लेकिन एक बड़ा लेकिन बीच में आता है, क्या, एक बेचारा साथी जो है वो फंस जाता है ऊपर, क्योंकि उसका पेट जो है वो खिड़की से बड़ा है। वो कौन है, मधुमंगल। हाँ, ब्राह्मण जो है लड्डू खा के पेट बड़ा हो गया उसका, और वो उसको ऊपर से खींच रहे हैं हाथ से, नीचे से सखिया खींच रहे हैं पैर से, और पेट जो है बीच में बेचारा। अभी आप मालूम है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, द मोर पावरफुल देन द अपर फोर्स, ऊपर खींच रहे हैं लेकिन नीचे भी खींच रहे हैं, तो बेचारा नीचे धड़ाड़ करके गिर जाता है, अकेला बचता है, कृष्णा बलराम पुकारता है वो, बचाओ बचाओ। तो बोलते मधुमंगल मधुमंगल निकलो निकलो, बोले कृष्णा कृष्णा बचाओ, भाग रहे हैं लेकिन वो चिल्लाता है, वो भाग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन इसको सब लोग अच्छी तरह पीटते हैं सब लोग मिलके, क्योंकि इतने सारों को पकड़ने का प्लानिंग किया था लेकिन एक ही मिला, सब भाग गए, इतना पीटते हैं उसको, तो वो भी चिल्लाता जोरों से, उसको समझ में आता है क्या करूँ। अचानक उसको याद आता है, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे लड़कियों मैं अभी जनेऊ तोड़ के शाप दूंगा आपको, तो धुता रहता है, अरे बाप रे ब्राह्मण का लड़का है, शाप देगा तो परेशान हो जाएंगे, बोले आप सबको सबकी शादी बूढ़ों से होगी, इसके साथ साथ बीवियां हैं। दिव्य साहब आपको सब लोग डर जाते हैं, बाप रे। उतने में कृष्ण बलराम सोचते हैं बेचारा ब्राह्मण का लड़का अकेला फंस गया, हम जाते हैं उसको, तो जाते हैं उधर और ऐसा नाटक करते हैं, अरे क्या गोपियों तुम लोग समझता नहीं है, ब्राह्मण का लड़का है, सांदीपनि मुनि का पुत्र है, वो पता नहीं आपको श्राप देगा तो सबका नाश हो जाएगा। सब गोपियाँ भी इतनी भोली भाली डर जाते हैं बिल्कुल, अरे बाप रे वो भी बोला ये भी बोल रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए, बहुत क्रोधित है वो, हमने उनको बहुत मारा है। तो बोलते हैं अभी उसको ही पूछो, तो फिर वो ऐसा बोलो सब लोग अपने अपने घर जाओ और बहुत बढ़िया लड्डू लेके आओ, कोई लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी के घर का लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सब लोग डर के मारे भाग जाती है, सांप के भय से जाती है और कुछ ही देर में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के लड्डू ले के आती है, उसको उस कुंड के किनारे बिठाते हैं, उधर एक सिंहासन है उधर बिठाते हैं उसको, उसकी पूजा करते हैं ब्राह्मण देवता की और लड्डू का भोग लगाते हैं, और महाराज जी ऐसे मस्त बैठते हैं फर्स्ट क्लास, कोई यहाँ से खिला रही है कोई यहाँ से खिला रही है, वो आनंद ले रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु, फिर उसको मुक्त कर देते हैं, वो इल्ला भी उसी कुंड के पास में देते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो, गहवर कुंड की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, हरे कृष्णा, मान मंदिर धाम की। और एक छोटी सी बात बताना रह गया, तो बहुत सारी बातें अभी क्या करेंगे, लेकिन फिर भी ये बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, वो 1971 में इस जगह पर सबसे पहली बार एक अमेरिकन बॉय की तरह आए थे, बहुत लंबी जटा धारण करके भगवान की खोज में आए थे। तो वृंदावन में वो रहे कुछ दिन घनश्याम बाबा के पास, और घनश्याम बाबा ने उनको बताया कि आपको बरसाने जाना है, वहाँ पर रमेश बाबा जी रहते हैं, उनके पास आपको आपके जीवन को जिसको ढूंढ रहे हैं आप वहाँ मिलेंगे आपको। तो हमारे महाराज जी वृंदावन से यहाँ पर आए हैं, तब उनकी उम्र 19 ईयर्स की थी, और यहाँ पर उन्होंने 6 महीने निवास किया है। ये जो जगह है ना आपको दिखता है ना गोल, यहाँ पर ये उसका ऊपर का कुछ नहीं था उस समय, ये भी इतना बढ़िया मंदिर नहीं था, इधर एक गुफा भी है अंदर, वो गुफा थी वहाँ पर, और बहुत ऐसा टाइल वेल कुछ नहीं था, ऐसा ही पर्वत था, और यहाँ पर वो सोते थे रमेश बाबा जी और सखी शरण बाबा जी, वो भी गुजर गए सखी शरण बाबा और राधानाथ महाराज जी, तब उसका नाम रिचर्ड था, तो यहाँ पर रहते थे वो, यहाँ पर डाकुओं का डेरा था उस समय, डाकू लोग अपना लूटा हुआ धन यहाँ के छुपाते थे गुफा में, और धमकी देते निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, फिर भी ये लोग यहाँ रहते थे। और राधानाथ जी महाराज जो है एक छोटे यंग बॉय थे, साधु की तरह रहते थे, और मानपुर में जाकर भिक्षा करके लाते थे, नीचे उतर कर 2 बाल्टी पानी उठाकर, इतनी सीढ़ी बनी नहीं थी, तो अभी अभी बनी हुई, ऐसे लंबे लंबे पत्थर थे उसमें हम लोग चढ़ते थे, मैं भी आया तभी भी सीढ़ी बनी नहीं थी, यहाँ पर पहाड़ के ऐसे पत्थर थे उसमें हम चढ़ते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उसमें वो 2 बाल्टी पानी लेकर ऊपर लेके आते थे और बाबा जी के लिए उसको सेवा के लिए देते थे पानी को, और मानपुर में रोटी मांगते थे जाकर, और फिर वो सब रोटी पहाड़ पर लेके आते थे, और उधर कैसा सिस्टम था जाने का और कीर्तन करने का घर के सामने, फिर दरवाज़ा खुलेगा और रोटी आएगी, फिर रोटी लेने का, फिर यहाँ पर आना है, फिर यहाँ कर बाबा जी उसको बंटवारा करते थे और रोटी पाते थे। यहाँ पर एक बार शेर आया था, मतलब ऐसी खबर आई थी कि शेर आ रहा है, तरमेश बाबा जी महाराज एक लाठी लेकर सो गए यहाँ पर, तो हमारे महाराज जी ने उनको पूछा, महाराज जी ये लाठी से आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा मेरा काम जो है वो मुझे करना है, बचा हुआ काम राधा रानी करेगी, मतलब आई शुड डू माई ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, मेरे पास जो भी है मैं रखा है मेरे पास, वो लाठी कितना काम देगी आई डोंट नो, लेकिन मेरा भरोसा लाठी पर नहीं है, राधा रानी पर है। तो इस जगह पर रमेश बाबा जी महाराज 1952 में आए थे, कितने साल हो गए आज, 63 ईयर्स हो गए ना, 63 ईयर्स हो गए। तो उस समय यहाँ पर डाकू रहा करते थे, उनको यहाँ से जान भगाने के लिए कई लोगों ने धमकी दिया, वो बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है, सब लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि जब वो डाकू आए उन्होंने ऐसा गन रोक दिया उसको, चले जाते हो कि नहीं यहाँ से गोली मार दूँ, आप क्या करेंगे, हाँ भाई जाता हूँ किसको मरना है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत सिग्निफिकेंट जवाब दिया, ऐसे निर्विकार बैठे हुए, समझो कोई चार पांच लोग गुंडे ऐसे गोली और तलवार वार लेके आए हैं, आपके ऊपर रोके खड़े हैं, आपको धमकी दे रहे हैं आंख के मारने की, तो ऐसे निर्विकार खड़े हैं, यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि अरे मरने के लिए तो आए हैं यहाँ पर, मार दो। तो क्या बोलेगा वो जो मारने की धमकी दे रहा है? तो जिसको मारने की धमकी दे रहा है वो बोल रहा है कि मरने के लिए तो आए हैं, भगवान की इच्छा है अभी मरना है तो मरने को तैयार है। चले गए वो बिना कुछ किए चले गए। लोगों को क्या पता होता है कि जब भी जान से मारने की धमकी होती है सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं, लेकिन जो मृत्यु से नहीं डरता है उससे उसको कौन डरा सकता है? सबसे बड़ी भय तो मृत्यु का होता है। देखिए बाबा जी की कितनी हिम्मत है। भक्ति तो है ही, लेकिन भक्ति जो है ना वो आदमी को निर्भय बना देती है। भक्ति एक ऐसा माध्यम है, यू बिकम फियरलेस टोटली। सबसे अधिक फियर किसका होता है लाइफ में होता है, बताओ बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट फियर दैट यू हैव? मर जाएंगे ना। लेकिन जिसको मृत्यु का ही भय नहीं है उसको कौन सी चीज डरा सकती है? पैसे का लॉस डरा सकती है कि भाई गर्लफ्रेंड का ब्रेकिंग डरा सकती है कि प्रॉपर्टी का चोरी हो गया डरा सकती है? वो केयर्स फॉर इट। भक्ति यानी राधा रानी और कृष्ण के चरणों का आश्रय, और जो व्यक्ति उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वो एकदम निर्भय हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने ना हमारे मीरा रोड के अंदर हॉस्पिटल बनाया है। सबसे पहले वहाँ पर एक छोटा नर्सिंग होम बनाया था, उसका पहले सबसे पहले एक फ्लैट लिया था। तो वो फ्लैट जब हम लेने गए थे और फाइनल डील हुआ और डील करके हम लोग फ्लैट के बाहर आ रहे थे, तो वो फ्लैट का जो ओनर था उसके पास एक छोटा कुत्ते का पिल्ला था। वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आया जैसे हम लोग आए, इधर मालिक बाहर आया तो पिल्ला भी बाहर आ गया। तो जब वो पिल्ला बाहर आया और हम लोग मेन रोड पर आए और फाइनल बाय बाय कर रहे थे, उसमें उस समय कुछ बड़े बड़े कुत्ते वहाँ से आए और वो भौंकने लगे ज़ोर ज़ोर से इस छोटे पिल्ले पर। छोटे पिल्ले ने क्या किया मालूम है? छोटा पिल्ला जाके अपने मालिक के दो पैर के बीच में खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा उस बड़े कुत्तों के ऊपर। कितना सा पिल्ला था, और वो बड़े बड़े कुत्ते रोड साइड के कुत्ते थे, स्ट्रीट डॉग्स। इसमें क्या प्रिंसिपल है? वो कमज़ोर है लेकिन उसने बलवान व्यक्ति का सहारा लिया है और वो निर्भय होकर उस बड़े कुत्तों पर भी भौंक रहा है। तो हमको अगर बलवान बनना है तो खुद बलवान बनने की भी जरूरत नहीं है, बलवान व्यक्ति का सहारा लो। वो इतना सा होने पर भी निर्भय है, वो इतने बड़े कुत्तों से भी नहीं डर रहा है क्योंकि उसने दो पैरों का सहारा लिया जो उसके मालिक का है, जो मालिक हज़ार गुना उन कुत्ते से ज़्यादा पावरफुल है, वो जानता है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ में दो पैरों के बीच में जोर जोर से बड़े कुत्तों पर भौंक रहा है वो, और उसका भौंकना देखकर बड़े कुत्ते भी चले जाते हैं। तो भक्ति भी यही है। भक्ति का मतलब क्या है? हम तो कमज़ोर है, हमें तो कंगाला, अमी तो कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली धाए तब पाचे पाचे। हम ऐसे भक्त का सहारा लेते हैं जो जिसने कृष्ण का सहारा लिया हुआ है, उनके सहारे से हम भी निर्भय हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण का सहारा लेकर वो भी निर्भय हो गए हैं। बाबा जी से हमने यही सीखा है। बाबा जी बड़े निर्भय है, ही इज फियरलेस, ही डजंट केयर फॉर एनीथिंग। भक्त होता है ना वो ऐसा, वो लेसा बेचा नहीं होता है। भक्ति होने के बाद हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तापा लगाया तो इधर भी मारो इधर भी लगाओ, ऐसा नहीं बोलेगा वो अन्याय का सहारा झगड़ा विरोध करेगा। वो खुद पर अन्याय करेगा तो मारो, भक्त पर अन्याय किया है तो हनुमान जैसे जला देगा लंका को। भक्त का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बनो, हम लोग कह रहे हैं नम्र बनो तो लोगों को, लोग आपको कुचल रहे हैं, आप बोलो और कुचलो, क्योंकि हमको बताया गया है कि आपको नम्र बनना है। ऐसा नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब सही कारण के लिए शस्त्र उठाओ, और जब सही कारण है तो नम्र बनो। वैष्णवों की व्याख्या मालूम है कैसे की गई है? मऊ मेणाउनी वैष्णव आमी कठिन वज्रा सही भेदो ऐसे। मतलब समय पर हम मोम से भी अधिक मुलायम है और समय पर वज्र से भी अधिक कठिन है। तो समय आएगा नाठवाड़ाचे हाथी माथी हाणू काठी, जब कोई आतंकवादी आएगा तो मारेंगे उसको, जो भक्त आएगा तो प्रणाम करेंगे उसको। समय पर मक्खन से भी मुलायम, समय पर वज्र से भी कठिन, ये भक्त है। और ये बाबा जी जो उसके जन्म से संघर्ष करते हुए आए, उन्होंने यहाँ पर जो गैवरमंद आपको दिख रहा है ना, उनका आपको लाख बार धन्यवाद करना है। 46 साल तक उन्होंने इस 63 ईयर्स के 46 साल तक उन्होंने गैवरमंद को बचाने की लड़ाई दिया है। घेवर बंद सब तोड़ रहे थे, मतलब यू नो हाउ पीपल आर देयर कटिंग सेलिंग द बोर्ड, लकड़ी को काट काट कर फिर वन का नाश कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत आंदोलन करके, झगड़ा करके, विरोध करके, बहुत पावरफुल करके बाद में इस वन विभाग में उसको दर्ज कराया। अभी वो सुरक्षित है, फिर उन्होंने उसको और डेवलप किया है। जो भी आपको दिख रहा है हरियाली यहाँ पर घेवर बन की, वो बाबा जी के संघर्ष की वजह से। उसके बाद में उन्होंने 1998 में ब्रज की परिक्रमा शुरू की 40 दिन की, इसका प्रमाण सब शास्त्रों में है। तब उनको दिखाई दिया कि सारे कुंड जीर्ण पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, कुछ में जल भी नहीं है, किसमें कचरा भरा हुआ है, किसमें क्या क्या है, सब पवित्र स्थान जब ऐसे लुप्त होते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो साहब शुरू किया और 50-60 से अधिक कुंडों का जीर्णोद्धार किया है। आज आप ब्रज में घूमेंगे, आप कई कुंड जो हमने पहले नष्ट होते देखे थे, आज बहुत सुंदर बन के पानी से लहरा रहे हैं। एक एक कुंड के पीछे 50-60-70 लाख रुपये खर्च होता है, टाइम लगता है बहुत उसके अंदर। वो कीर्तन मंडली को बिठाते हैं और कीर्तन करते रहते हैं 24 घंटा, और कुंड का उद्धार होते रहता है। ये भी चमत्कार यहाँ पर होता है उनके वजह से। उन्होंने तो कई कुंडों को जीर्णोद्धार स्वयं कराया है, और उनको देखकर कई संस्थाओं ने भी कई अदर कुंडों को जीर्णोद्धार किया है, वनों का उद्धार किया है, बहुत सारा काम। अभी वो जमुना जी दिल्ली में उसको रोक कर डाइवर्ट किया गया है, और यहाँ पर जो जमुना जी है वो जमुना जी है ही नहीं, उसे सुवेज घूम रहा है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 साल हो गए अभी। और उनका बल क्या है सबसे बड़ा, वो खाली भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, राधा रानी को पुकारते हैं, और वही उनका शक्ति है। उसके वजह से ही सब कुछ ये कार्य ब्रज में परिवर्तन क्रांति जो हो रही है उसकी वजह से हो रही है। और हमारा भी बल वही होना चाहिए, राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम और उनका आश्रय, यही हमारा बल स्थान होना चाहिए। ना कि हमारा पैसा, ना कि हमारी शक्ति, ना कि हमारा पोजिशन, ना कि हमारा इन्फ्लुएंस, ये हमारा बल नहीं है, वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन राधा रानी का आश्रय हर समय आपको बल देगा। तो यही आपको मैसेज लेके यहाँ से जाना है, टेक दी स्ट्रेंथ ऑफ द शेल्टर ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का जप कीजिए, उसी में सारी शक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और भगवान से भी अधिक पावरफुल है। इसलिए राम जी ने जब अपने हाथ से पत्थर डाला तो वो डूब गया, लेकिन राम का नाम लेकर भक्तों ने डाला तो वो तैर गया। तो राम को भी आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, आप डाल रहे हैं मेरा नाम लिखकर तो तैर रहा है, मैं खुद डाल रहा हूँ तो डूब रहा है। उन्होंने कहा ठाकुर जी आपने जिसको त्याग दिया उसको डूबना ही है, लेकिन आपका नाम जिस पर लिखा हुआ है उसको तैरना ही है, उसको कौन डुबा सकता है। तो नाम जो है प्रभु का, वो प्रभु से भी बलवान है। इस विश्वास के साथ में हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी गुरुजी की कहानी है, ये एक किताब में लिखी हुई है, इसका नाम है जर्नी होम, हिंदी में अनोखा सफ़र, मराठी में त्रिशार्थ पथिक, गुजराती में पेलू पारनू प्रवास, ऐसे हर भाषा में इंडिया के वो किताब अवेलेबल है, जर्नी होम। वो ज़रूर आप पढ़िए, उसके अंदर बहुत रोचक और सनसनीखेज कहानी है कि कैसे एक साधक जो है वो अमेरिका से निकलता है और कैसे भगवान तक पहुँचता है, बहुत रोमांचक कहानी है। आपको भी यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में दिया हुआ है, आपके ग्रंथालय में वो किताब अनोखा सफ़र दी गई है, आप उसको पढ़ो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक संत जो होता है वो कितनी मेहनत से भगवान को प्राप्त करता है, श्रद्धा से उसको खोजता है और उसको मिल भी जाते हैं भगवान। श्रद्धा से जो खोजेगा वो क्यों नहीं मिलेंगे भगवान, भगवान तो जितनी आप उनको मिलने के लिए आतुर हैं उससे भी कई गुना भगवान आपसे मिलने को आतुर हैं, जानते हो आप। मोर ईगर इज नॉट यू टू मीट द लॉर्ड, लॉर्ड इज मोर ईगर टू मीट यू। तो अगर आपने तमन्ना की कि मैं मुझे आपको मिलना है तो वो आपसे ज़्यादा उत्सुक है आपको मिलने के लिए, तो वो आपको हाथ देंगे तुरंत, उसका सहारा लो। जब करते वक्त सोना नहीं, अलर्ट होकर जब करना, पुकारना उसको हृदय से पुकारना, कहो हरे कृष्ण कृष्ण क्या लड्डू क्या बनाया, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, हरे कृष्ण 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 हरे, सामान पहुँचा क्या, बिल आया क्या, पैसा मिला कि नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे, ये इसको जब नहीं करना है, ऐसे हृदय की कशिश से पुकारना है उसको। जब वो पुकार होगी तो सुनेंगे, नहीं तो दुनिया भर की बातें चल रही है इधर, मोबाइल पे व्हाट्सएप में खेल रहे हैं सब, वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, भगवान सब जानते हैं। तो जो हृदय से पुकारता है उसके लिए वो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।